कल गया जी, अफगानिस्तान देखें वो उनके पास वो जीरो ओ करता है जी, वो जीरो इसलिए ओ करता है कि उसको कोई देने वाला तैयार नहीं है, इसलिए जीरो ओ करता है। मुझे भी आज सारे बैंक्स मना कर दें कि भाई हमने आपका घर छीन लिया, आपकी गाड़ी छीन ली, सब कुछ छीन लिया आपसे और आपको कोई लोन नहीं दिया जाएगा, तो मैं भी जीरो ओ करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे कोई दे ही नहीं रहा है, तो मुझे कोई देगा ही नहीं तो मैं कहां से ओ करूंगा किसी को। तो अफगानिस्तान के पास अगर ये आज है ना कि अफगानिस्तान जी उसका डॉलर जो देखे, अफगानिस्तान का डॉलर जो है वो पाकिस्तान से कितने ऊपर पहुंच गया है। व्हाट अ स्टूपिड टॉक दिस इज रबिश टॉक। लोग बेवकूफी की बातें करते हैं ये कि अफगानिस्तान से मुकाबला करते हैं। अफगानिस्तान का हमारा कोई मुकाबला है? कोई मुकाबला है? कम ऑन गाइस, अफगानिस्तान देखें जी, अफगानिस्तान कहां से कहां निकल गया जी, वो इस्लामी मुमलिकत है जी, वो अल्लाह के नाम पे आए तो हम भी अल्लाह के नाम पे आते हैं, हमारे पास भी बहुत मसाजिद है वहां पर, हमारे अभी दिन में 5 दफा अजाने होती है स्पीकर पे वहां पर, हम भी बड़े बहुत नेक से नेक तरीन लोग वहां पर पैदा हुए, नेक से नेक तरीन लोगों के मकबरे उधर हैं, नेक से नेक तरीन लोग अभी जिंदा हैं वहां पर। अगर कुछ लोग वहां पर खराब हैं तो होंगे, जरूर खराब होंगे, जरूर खराब होंगे। भाई ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में कोई गंदा गलत आदमी है ही नहीं, जो बदमाश पैदा ही नहीं हुए जी, आजकल कोई चोर चक्के और रेपिस्ट है ही नहीं वहां पर, होंगे जरूर होंगे, वो भी इंसान है ना, वो भी इंसान है, होंगे जरूर होंगे पाकिस्तान में भी। मगर ये कहना कि हर शख्स वहां का ऐसा है या हर चीज वहां खराब है जी, हर चीज खराब, कोई खराबी वराबी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। I'm telling you, one of the best countries in the world. कर ले मुकाबला किस कंट्री से करते हैं आप? कनाडा से मुकाबला कर ले, मेरे साथ बैठे डिबेट करें आप। अमेरिका से करना आपको मुकाबला, मेरे साथ देखें गुर्बत, देखें अमेरिका में जाके देखें, आप 9 घंटे की ड्राइव करके न्यूयॉर्क पर जाएं, न्यूयॉर्क में तो आपको हजारों की तादाद में मिलेंगे। आप यहां चले जाएं डिट्रॉइट, डिट्रॉइट को भी छोड़े 4 घंटे लगते हैं, आप बफलो चले जाएं यहां से, जब आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे ना आपको पता लग जाएगा कि मैं अमेरिका में आ गया हूं। दिस कंपैरिजन बिटवीन अमेरिका एंड कनाडा, यहां की सड़कों को देखते हुए आप जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में दाखिल होंगे ना, तो टूटी फूटी सड़कें, टूटे फूटे मकाना, टूटे फूटे ऐसा जैसे कि वॉर जोन में आ गए हम, और वहां पर लोग आपको वहां से भीख मांगते हुए नजर आएंगे। ये अमेरिका है ना, दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है और सबसे बड़ा मुल्क है जी, सबसे बड़ा पावरफुल मुल्क है, और आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए यूक्रेन पे, आप देते अपने लोगों को जो रोडों पे बैठे हुए बेचारे एक वक्त का खाना नहीं है उनके पास, देना उनको, ये तो अमेरिका में नहीं होना चाहिए ना, कनाडा में तो नहीं होना चाहिए ना ये चीजें। हाँ आपको गरीब पाकिस्तान में भी मिलेगा, पाकिस्तान में क्या इंडिया में भी मिलेगा, अफगानिस्तान में भी मिलेगा, मगर यहां पर ये लोग जो हमको समझते हैं हम भीख दे रहे हैं उनको, कोई भीख विक नहीं चाहिए किसी को, इतने खुददार लोग हैं कि वो हाथ नहीं फैलाते। हाँ कुछ खराब लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे गवर्नमेंट के बाहर हो, चाहे वो हो, पाकिस्तान का नाम खराब किया उन्होंने, मगर ये मुल्क कहीं नहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा ये मुल्क। और मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरे से डिबेट कर लें आप, मेरे से आप आके बैठ के डिबेट करें कि दुनिया के किसी मुल्क, किसी भी मुल्क से आप कंपेयर कर लें हमें पाकिस्तान को। सऊदी अरब को कहते हैं आप तो इतना रिच है, इतना बड़ा है, इतनी बड़ी चीजें वहां पर, क्या पैसा ही पैसा, पैसा 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 पैसा, पैसा क्या है जो लोगों को वहां से, मुसलमान लोग, मुसलमान की बड़ी कंट्री है ना ये, मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियंस हो, फिलीपींस से, इंडिया से, केरला से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, इधर से उधर से लेके आते हैं। एक जमाने में उनको पैसे दिया करते थे मजदूरों को 25 रियाल घंटे का या 40 रियाल घंटे का उनको दिया करते थे, एक जमाना था जब नया नया वो उनके पास पैसा आया था, तो इनको पता था कि इंसान क्या होते हैं। आज उन्हीं लोगों को 3-3, 4-4, 5-5 रियाल घंटे के हिसाब से देते हैं पैसा, और इसे बेइंतहा काम करवाते हैं। ये इंसानियत है? हम तो ऐसे पाकिस्तान में नहीं है ना, हम तो ऐसे इंसान नहीं है ना। अगर हमारे पास भी अल्लाह सुब्हान तआला हमें भी दे दे इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स, फिर भी हम इस तरीके का सलूक नहीं करेंगे जिस तरीके से अरब पाकिस्तानियों से, हिंदुस्तान के लोगों से, श्रीलंका के लोगों से, फिलीपीन के लोगों से, बांग्लादेश के लोगों से, उनको मिस्कीन किया कि उनको ऐसा करते हैं कि इतना काम करा के वो समझते हैं कि हम इस पर एहसान कर रहे हैं इनको 5 रियाल देके। इंसानियत तो नहीं है ना ये, क्या कर लेंगे पैसा लेके? वो कर लो, कितने शाह थे, कितने वो थे, मौत तो सबको आई है ना, आई है ना मौत सबको। एनीवे प्लीज अपना रवैया बदल लें, अपना रवैया बदल लें, अपना अपनी जहनियत को बदलें, अपने मेंटालिटी को बदलें अपने। हमेशा पाकिस्तान को गालियां देके गिराने की जरूरत नहीं है, बहुत प्यारा मुल्क है। हाँ, अप्स एंड डाउन्स हर जगह आते हैं, हर जगह, हर चाहे वो इंडिविजुअल अप्स एंड डाउन्स हो, अपनी फैमिली में अप्स एंड डाउन्स हो, अपने शहर में अप्स एंड डाउन्स हो, अपने प्रोविंस में अप्स एंड डाउन्स हो, अपने मुल्क में अप्स एंड डाउन्स हो, ये हर जगह आ सकते हैं। अप्स एंड डाउन्स हर जगह आते हैं। अगर किसी का डाउन का वक्त है तो ऊपर भी जाएगा वो, और जरूर जाएगा पाकिस्तान ऊपर। एंड आई डोंट केयर कि कौन 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 आता है वहां पर, कौन गवर्नमेंट लेके बैठता है, कौन क्या करता है, क्या नहीं करता। सियासत मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, पॉलिटिक्स इज नॉट माई सब्जेक्ट, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन पॉलिटिशियंस। पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं मैं, आई डोंट बिलीव इन पॉलिटिशियंस कि वो वोट लेने के लिए दे विल प्रॉमिस एनीथिंग। आप देखते हैं ना कि वो मुल्क के जो भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो भी होते हैं, वो मस्जिद में जाएंगे ना तो वो टोपी पहन के, शलवार कमीज पहन के जाएंगे। मुसलमान खुश हो गया, जी हमारा देखे जी प्रेसिडेंट, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, देखे शलवार कमीज पहन के आया है, इसी में खुश हो गया। वो गुरुद्वारे में जाता है तो पीले रुमाल पहन के ना वो उन्हीं का लिबास पहन के चला जाता है। वो जिस सारे हमारे सरदार लोग माशाल्लाह, वो खुश हो गया, जी वो जी देखो जी अब क्या पहन के आए ये। वो हिंदुओं के मंदिर में जाए तो वहां पर, ज्यूइश के वहां पर जाए तो उसके अंदर वो बीनी पहन के चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो ना, ये दीज आर पॉलिटिशियंस हु आर डूइंग दिस। सर जमीन हर जगह की अच्छी है, ये पॉलिसीज जो मेकर्स है ना, दे आर द वंस। सो आई डोंट बिलीव इन पॉलिटिशियंस, आई डोंट बिलीव इन पॉलिटिशियंस, वट एवर दे आर सेइंग दे आर लाइंग टू यू। प्रेसिडेंट फोर्ड ने भी तो ये कहा था ना, हारने के बाद उन्होंने ये कहा था कि मैं इतना, मेरे झूठ को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसके झूठ को एक्सेप्ट कर लिया, ये दिया। दिस इज वन ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंसी का, जनाब फोर्ड साहब, उन्होंने ये कहा था हारने के बाद। तो ये खुश रहे, आप खुश रहेंगे ना तो आपके बीवी बच्चे खुश रहेंगे, आपके दोस्त अहबाब खुश रहेंगे, आपके जो साथ मिलने मिलाने वाले हैं ना वो खुश रहेंगे। अगर हर शख्स एक जगह बैठे हुए जी शादी के अंदर, एक टेबल पे 9 लोग बैठे हुए, 9 के 9 लोग गालियां दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो लानत है तुम्हारे मुंह पे। एनीवे जी, कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम लेते हैं, प्रोग्राम में वापस आएंगे। अदनान अलवी से मैंने आपकी बातचीत करवानी है, और उसके बाद फिर साहब हम आपकी बातचीत करवाएंगे किससे, फयाज बलाना साहब से। फयाज बलाना साहब आके पाकिस्तान के हालात हाजिर पे आपसे बातचीत करेंगे। कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम, विल बी राइट बैक।
स्मार्ट ऑप्टिकल्स, नजर की आना क्या धूप का चश्मा, आई साइट चेकअप के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर, खूबसूरत दिखने के लिए डिजाइनर ग्लासेस, सनग्लासेस, वाइड सिलेक्शन, कॉम्पिटेटिव प्राइसेस, डायरेक्ट बिलिंग टू द इंश्योरेंस कंपनी,
25% डिस्काउंट विद दिस एड।
स्मार्ट ऑप्टिकल्स, 9058212444, 821-2444,
2275 Britannia Road West, Unit 7, Mississauga.
Village Tastes, Ontario का सबसे बड़ा पाकिस्तानी बफे 40 से ज्यादा आइटम्स के साथ। एंजॉय करें हमारे डिलीशियस मेन्यू को, कढ़ाई, करीज, बारबेक्यू, बारबेक्यू प्लेटर, रोल्स एंड मच मच मोर। और अब डेली डिनर बफे और वीकेंड ब्रंच बफे भी। पार्टी रूम्स या कैटरिंग सर्विसेज के लिए कॉल 9052323663, 6477744888। Village Tastes।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900.
کیا آپ کے گھر اور آٹو انشورنس کی رینول ہو رہی ہے؟ کیا آپ درست انشورنس کوریج کے لیے اچھی قیمت کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آپ کو آل اسٹے ایجک ایجنسی کے راجہ مدثر کو 6472903773 پر کال کرنی چاہیے. آج ہی کال کریں اور آپ دو کاروں اور ایک گھر کی انشورنس کراتے وقت تقریباً $1,775 کی بچت کر سکتے ہیں. راجہ مدثر 6472903773 آل اسٹیٹ کے ساتھ آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں. ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپلائی.
ریئل اسٹیٹ دی دنیا وچ تھوڑی کامیابی ایگزیکٹو ہومز ریئلٹی جتھے تسی 1.5 لاکھ تو 2 لاکھ سال دا کما سکدے ہو. اس تو علاوہ فری بائر اینڈ سیلر لیڈز، وی آئی پی ایکسس ٹو پری کنسٹرکشن پروجیکٹس، ون آن ون سیلز اینڈ مارکیٹنگ مینٹرشپ، ٹیچ اینڈ ٹرین پروگرام، سٹیٹ آف آرٹ ماڈرن آفس with private room, in-house mortgage and loyals team, in-house projects investment opportunity. Phir der ka di, aao te join karo Executive Homes Realty ya call karo 905-890-1300 ya visit karo ehrb.ca.
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਨਵੀਂ SUV ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ 2023 ਦੀ ਫੋਰਡ ਐਸਕੇਪ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਔਰ ਪਲੱਗ ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, 13 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ 1.99% ਦਾ APR ਪਰਚੇਸ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਲੈਕਟ 2023 ਐਸਕੇਪ ਮਾਡਲ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਟੋਰੋਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਫੋਰਡ ਡੀਲਰ ਨੂੰ. ਅੱਛੀ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਔਨ ਸਟੇਜ 12-18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਰ ਅਹਦ ਰਜ਼ਾਨੀਦ ਕੋ ਹੈਮਲਟ ਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮੇ ਦੇਖ ਕਰ ਖੁਸ਼ ਔਰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਤੇ ਹੈ. ਹੈਮਲਟ ਜੋ ਅੱਜਕਲ ਕੇ ਦੌਰ ਕੇ ਲਿਏ ਗਜ਼ਬਨਾਕ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਇੰਤਕਾਮ ਔਰ ਦਾਗਦਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਕਹਾਨੀ ਹੈ. ਕਿਆ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਕੇ ਸਾਥ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪਾਗਲਪਨ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਾਈਨ ਪਰ ਚਲਨੇ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਤੇ ਹੈ? ਯੇ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਸੱਚਾ ਸਾਨਿਆ ਹੀ ਲਾ ਸਕਤਾ ਹੈ. ਦੇਖਣਾ ਮਤ ਭੁਲੀਏਗਾ ਹੈਮਲਟ 12-18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੇ. सेल टिकट्स खरीदने के लिए विजिट करें brampton-on-stage.ca.
हाँ साहब, मैंने भी पानी पी लिया. ओके, मैंने भी ठंडा ठंडा पानी पिया, एकदम ठंडा पानी. अगर यहाँ शावर होता तो शावर है अपस्टेयर्स, मगर शावर का टाइम नहीं है ना. मतलब मैं ठंडा ठंडा शावर ले लेता ना, तो इसका मतलब है कि डन एवरीथिंग. एनी वे, छोड़ो जी, कनाडा को छोड़ो, अमेरिका को छोड़ो जी, बहुत खुश है. पर यहाँ पर अभी हम जब ब्रेक में बात कर रहे थे, किसी के पास मॉर्गेज नहीं है पाकिस्तान में. होगा होगा, तब ये नहीं है. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट हैव मॉर्गेजेस. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव देयर ओन कार्स. होंगे, कुछ बैंकों ने शुरू किया है अभी क्रेडिट कार्ड्स यूज करना. वहाँ का कोई वो फैशन नहीं है जैसे यहाँ पर है. तो जो है सो उसमें खुश हैं जी, खुश हैं. एनीवे, चंद महिया साहब, आसिम अजहर की आवाज़ में ये गीत सुनिए. उसके बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जनाब अलवी साहब से. अलवी साहब को बताएंगे कैसे पैसे बनाने हैं. आप पैसे बनाने आपने अलवी साहब बताएंगे आपको. पहले ये गाना सुनिए, जरा मूड ज़रा सही कर लेना अपना. गाना सुनिए, उसके फौरन बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे.
क्या ये कैसे हो गया दिल मेरा पूछे सवाल रे तुझे देखूं मैं सपनों में लहरों में अपनों में हर चेहरा तेरा ही दीदार है तेरी अदाएं मेरा चैन चुराने बोली ये बातें मेरी जान ले जाने आंखों ही आंखों से तू सब बतलाए समझ में गया पर यकीन हुआ जब हम मिले चंद माहिया
कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है
ओ फिर बने भी क्यों ना क्योंकि बेडरूम सेट सोफा सेट मैट्रेसेस डाइनिंग टेबल डेकोरेटिव आइटम्स गल कीजी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं ड्राइव थ्रू फैसिलिटी एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 519-622-0660 जां quicktrucklube.com QTL बिकॉज़ वी केयर
आयशा ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए
10 जगह क्यों एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स
फातिमा ग्रोसर्स
जी हाँ फातिमा ग्रोसर्स मसाले ताज़ा सब्जियाँ फल हलाल गोश्त मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स 512 ब्रिस्टल रोड वेस्ट ऑफ मिसिसागा 9058487000 फातिमा ग्रोसर्स सबसे जबरदस्त
रियल एस्टेट में नए एजेंट्स की कामयाबी की जमानत
वेलकम टू एग्जीक्यूटिव होम्स रियलिटी 150 से 2 लाख सालाना कमीशन
फायर एंड सेलर लीड्स वीआईपी एक्सेस टू प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स वन ऑन वन सेल्स मार्केटिंग एंड मेंटरशिप स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न ऑफिस प्राइवेट रूम्स
इन हाउस मॉर्गेज लॉयर्स टीम
इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज तो फिर देर कैसी आइए ज्वाइन कीजिए
एग्जीक्यूटिव होम्स रियलिटी
905-890-1300 विजिट कीजिए ehrb.ca
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਾਂਜੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ ਸਟੋਵ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ 3-ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਸੈਮਸੰਗ ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ ਸ਼ਾਰਪ ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ 801 Bowie Drive West Brampton ya call karo 905-450-2828 905-450-2828
जी समय नासरी वेलकम बैक अगेन एंड 5:19:26 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और स्टिल ब्यूटीफुल गॉर्जियस 20 डिग्रीज टेम्परेचर हमारे मोहल्ले में और सब हाँ अभी थोड़ी देर पहले बड़ी गर्मा गर्म बातचीत चल रही थी आप लोगों की और आप लोग सारे एक तरफ थे और मैं एक तरफ था मेरे साथ भी कुछ लोग थे यहाँ पर मगर बात क्या हो रही थी कि पाकिस्तान में खुशहाली है साहब यहाँ पर खुशहाली नहीं है साहब اور یا پاکستان میں خوشحالی نہیں ہے اور یہاں پر خوشحالی ہے. طرح طرح کے آپ کے پاس ریزننگ تھی, میں نے اپنی ریزنز دیے, آپ نے اپنے ریزنز دیے, اور آج کل کے حالات کو دیکھا جائے تو صاحب آج کل کے حالات میں پرائسز اتنی بڑھ گئی ہیں ہر چیزوں کی, مورگیجز اتنے بڑھ گئے ہیں ہر لوگوں کے, مورگیج پیمنٹس اتنی بڑھ گئی ہیں, گیس کی پرائسز اتنی بڑھ گئی ہیں, پیسوں کے لیے ہر ایک پاس قلت ہے. ان معاملات میں صاحب میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں جناب عدنان علوی سے. عدنان علوی صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں لائف ٹائم گروپ جو کمپنی ہے اس کے, اور ان کا کہنا یہی ہے کہ انویسٹ وائزلی اینڈ لیو ویلتھی. 4163010249 جناب عدنان علوی صاحب کا فون نمبر ہے. اور کیا ہی بات ہو کہ بھائی میں ایکویٹی, ہر ایک کے گھروں میں ایکویٹی ہے, جو آپ کے گھر ہیں اس میں آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کی کتنی ایکویٹی ہے, اور جو آپ وہ ایکویٹی ہے وہ ایکویٹی کو میں جس طریقے سے, لوگ تو ایکویٹی کا نام دیتے ہیں نا, میں اس کو نام دیتا ہوں فضول کا پیسہ, از اے ڈیڈ منی. پیسہ پڑا ہے آپ کو, آپ کو نہ وہ, اگر آپ کی ایکویٹی 5 لاکھ کی ہے تو کل وہ 6 لاکھ کی نہیں ہو جائے گی, انلیس پرائسز آف دا ہاؤسز گو اپ وے اپ ہائی. مگر یہ کہ آپ کی جو ایکویٹی ہے اس کو اگر آپ یوز کر کے جو آپ کا مارگیج ہے جو آپ دے رہے منتھلی, اگر مارگیج فری ہو جائے وہ کیا ہی بات ہے, آپ کا گھر ویسا کا ویسا ہی, آپ کا آپ کے مارگیج ویسی ویسی ہے سب کچھ, مگر جو منتھلی پیمنٹ آپ کے جاتے ہیں ایکسکیوز می, وہ اگر آپ کے پے آف ہو جائیں تو آپ کی سب سے بڑا بل جو ہے سب کا جو گھروں میں رہتے ہیں ان کا مارگیج از دا سب سے ہائیسٹ پیمنٹ. کس طرح کرتے ہیں, کیسا کرتے ہیں, کس طریقے سے آپ کی مشکلات کو آسان کر دیں گے, یہ جناب عدنان علوی صاحب فرینڈ آف مائن فار مینی 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 ایئرس, ڈفرنٹ پروجیکٹس ان کے پاس, یہ تو میں نے صرف ایک بتایا آپ کو نا, ڈفرنٹ ڈفرنٹ پروجیکٹس ہیں ان کے پاس, ان کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کی مشکلات کو آسان بھی کریں, خود بھی پیسہ بناتے ہوں گے اس میں, ضرور بناتے ہوں گے, مگر یہ کہ لوگوں کی مشکلات کو آسان کریں, ثواب بھی کمائیں, ان کی دعائیں بھی لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی زندگی گزارتے رہیں. عدنان علوی صاحب میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟
تھینک یو ماجد بھائی, عدنان علوی کی طرف سے اور لائف ٹائم گروپ کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو اور تمام لسنرز کو السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ ایوننگ. آپ ماشاءاللہ انٹروڈکشن ہی اتنا زبردست طریقے سے کراتے ہیں, تمیز باندھ دیتے ہیں پوری. آپ
اس کے ایکسٹرا پیسے ہوں گے سر, میں آپ کو بتایا تھا اس کی الگ وائس آئے گی آپ کے پاس.
جی جی, مجھے بھی بھیجیے اور یہ جو لوگ سن رہے ہیں لسنر ان کو بھی بھیجیے, کہ ان کا بھی پیسہ ہو رہا ہے.
بہت شکریہ سر آپ کا, بڑی مہربانی آپ کی, فرمائیے.
جی ہمارا جناب, آپ بار بار ہر دفعہ بولتے ہیں انویسٹ وائزلی لیو ویلدی, بالکل ٹھیک ہے. لائف ٹائم گروپ سر انگیج ہے ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ, جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس سے ہم لوگ ریلیٹڈ ہیں, اور لسنرز کو اس کا کیا فائدہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے اسٹیجز ہیں, لیٹس سپوز سیل پرچیز ہے, رینوویشنز ہیں, ہم کنسٹرکشن میں, وی آر لائسنس بلڈر ان آنٹیریو. تو لسنرز کو فائدہ یہ ہے کہ کسی بھی لیول پر ہمیں جوائن کرتے ہیں ایز این انویسٹر تو وہ پیسے اچھے بنائے جا سکتے ہیں وہاں پہ. بھائی بھائی آپ نے ابھی بات کی اور آپ نے کچھ ریفرنس بھی دے رہے تھے کہ آپ لوگوں کا کچھ شاید مباحثہ بھی ہو رہا تھا پاکستان سے ریلیٹڈ چیزوں پہ, میں نے تو خیر نہیں سنا, پر میں ابھی آپ کی بیچ سے ہی بات سنی تو میرے ایک ذہن میں ایک بات آئی, پہلے میں وہ شیئر کر دوں اپنے لسنرز کے ساتھ,
ضرور
پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. میرے پاس آپ کو پتا اتنے یہاں پر کلائنٹس یا پراسپیکٹس میرے آتے ہیں, اکثر شکایت کرتے ہیں کہ یار بچے ہماری بات نہیں سنتے, ہمارے یہ کینیڈین بچوں کی بات ہو رہی ہے
جی,
وہ یہ کہتے ہیں کہ یار جب بڑے ہو جاتے ہیں نا, جب ایجوکیشن لے لیتے ہیں, یونیورسٹی سے فارغ ہو جاتے ہیں اور سیم ٹائم جب شادیاں بھی ہو جاتی ہیں تو پیرنٹس کو کچھ گھاس ہی نہیں ڈالتے, سمجھتے ہی نہیں ہیں, اور منہ پہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم, آپ کو کچھ نہیں پتا, ہمیں پتا ہے.
صحیح.
تو کبھی ہمیں پتا اس کا ریزن ڈھونڈنا چاہیے مائی بھائی کہ وہ ایسے کیوں کہتے ہیں. اور میں نے جو یہ جانا ہے نا وہ یہ جانا ہے کہ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دیکھا ہے انہوں نے اپنے پیرنٹس کو ہمیں, کہ وی آر لوزر بیسیکلی, کہ ہمیں جیسے تیسے کر کے ان کی ہم نے پرورش کر کے ان بچوں کو 12th تک پاس کروایا, پہلے تو وہاں تو ایجوکیشن ہی فری تھی, उसका जब वो यूनिवर्सिटी गए तो उन्होंने अपने लोन खुद ले लिए, ठीक है ना, लोन ले लिए, अब वो जॉबों में चले गए तो वो लोन भी उतार रहे हैं और अपना कुछ अपने तौर पे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो पेरेंट्स से हो सकता है मुंह पे खुल के ना कहते हो पर बात दिल में तो रखते होंगे ना कि किया क्या है आपने हमारे लिए भाई। हमारे जब तक पैसे आ रहे थे, जब तक हम छोटे थे, 18 साल से छोटे थे, वो भी खर्च करते रहे अपने कामों में, एजुकेशन तो हमारी फ्री थी। जब हमारी एजुकेशन पैसे में लगने लगी तो हम आपने हमसे कहा कि जाके लोन ले लो उस ऐप का, तो हमने लोन लेके वो जना पढ़ाई भी कर ली, ठीक है। तो पेरेंट्स इस वजह से फाइनेंशियली कोई मिसाल ही कहीं नहीं रख पाते ना बच्चों के आगे, तो बच्चे रिस्पेक्ट करेंगे कैसे इस बात की ना।
सही।
तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इन लोगों को यही समझाता हूँ कि आपने जो है अपने आप को ऐसे रखें कि कम से कम आपको पूरी लाइफ बच्चों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े या बच्चों से मांगने की जरूरत नहीं पड़े। बच्चे अगर अपनी मर्जी से करते हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, उनको करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि हम पेरेंट्स बहुत कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए, सेक्रीफाइसेस करते हैं, नॉट इवन फाइनेंशियली खाली ना, बहुत चीजें अपनी कुर्बान करते हैं और फिर जो है ना वो उनके लिए करते हैं। बहुत सारी मैंने स्पाउस मतलब माएं देखी हैं जो जॉब ही नहीं करती कि हम बच्चों को अच्छी तरबियत देने के रख के ना, तो वो सारी चीजें हैं। मगर मेन चीज जो है ना मेरे भाई, आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे, वो है आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। जब पेरेंट्स फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं ना तो फिर बच्चे बात सुनते हैं उनकी, फिर बच्चे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते उनको, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि उनके पेरेंट्स ने न सिर्फ हमारे लिए कुर्बानी दी है बल्कि आज उन्होंने अपने उस सफर से गुजर के वो आज हमारे सामने खुद फाइनेंशियली एक मिसाल बने हुए हैं कि उनके पास सेविंग्स भी हैं, उनके पास अच्छी जॉब भी थी, उनके पास आज अच्छी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, तो उनको हमारी जरूरत नहीं है। जब बच्चों को ये अंदाजा हो जाएगा अब इनको हमारी जरूरत नहीं है तो फिर बच्चे बात सुनते हैं। अगर वो देखेंगे कि मेरे फादर एक कामयाब बिजनेसमैन थे या जो भी काम उन्होंने किया, ठीक है ना, तभी तो वो बात सुनेंगे। जब उन्होंने देखा होगा यार ये तो खुद इधर आगे पीछे करके यार चीजों को चलाते रहे फाइनेंशियली, तो क्या हमने उनके आगे जो है बनाएंगे। खैर बहरहाल ये मैं अभी यहां पर मैं रोकता हूं, मेरा नंबर है 416-301-0249, 416-301-0249। माहिर भाई थोड़ा सा टॉपिक को अभी चेंज करते हैं, मेरे पास अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे, मैं खुद ही उसका जवाब भी देता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने में क्या फर्क है असल में ना। भाई सेविंग तो हम कर ही रहे होते हैं, हमारे सेविंग अकाउंट में हर महीने हम $200-400 अपनी बजट के हिसाब से हम उसमें डालते रहते हैं, तो सेविंग तो हम कर रहे हैं। तो आप बताएं आप हमें क्या एडवाइस कर रहे हैं, या आपकी एडवाइस हमारे किस काम की है, तो उसमें मैं इसी बताना चाहता हूँ। सेविंग जो है ना वो एक इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टमेंट करने का, बेसिकली तो वो आप समझिए स्टेप वन है। जाहिर इन्वेस्टमेंट आप जब करेंगे जब पैसे होंगे, पैसे जमा करने के लिए आपको सेविंग्स करनी पड़ेंगी असल में, तो ये स्टेप वन है। जो भी हम हर महीने कुछ अपने बजट में डालते रहते हैं $200-400, वो 2-3-4 सालों में हमारे पास पता चलता है जी 20,000-25,000 जमा हो गए। फिर उसमें से कई लोग जो है वो सोचते हैं कुछ, जिसकी जैसी नॉलेज होती है या जिसको जैसा चांस मिलता है, कोई इसको स्टॉक में लगा देता है, कोई फंड्स में अदर कहीं लगाता है, वहां से कुछ पैसे बनाते हैं, फिर किसी के और बढ़ जाते हैं तो वो कहीं प्री कंस्ट्रक्शन में रियल एस्टेट में कदम रखते हैं, वहां से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये तो प्रूवन है कि प्रॉफिट जो है कनाडा के अंदर जो बनता है वो रियल एस्टेट से ही बनता है असल में, तो वो लोग फिर एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं वहां से। तो ये फर्क है जो मैं बताना चाहता हूं कि सेविंग्स पहला स्टेज है, आपको पैसे जमा करने हैं कुछ ना कुछ, और फिर वो जब जमा हो जाए कुछ 20-25 हजार, फिर आप उसको कहीं आगे लगाते हैं जहां से आपको प्रॉफिट या कोई रिटर्न आना शुरू होता है, तो वो स्टेप टू हो जाता है जहां से फिर आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू होता है। खाली आप सेविंग करते रहेंगे तो लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा, आपके चेंज जब ही आएगा जब आप उस जो आपने सेविंग की है उसको आप कहीं ऐसी जगह लगाएं कि जब आप इवन सो भी रहे हो तो आपके वो पैसे वहां बन रहे हो असल में ना
जी।
तो एक ये चीज है। तीसरा मैं पॉइंट ये कहना चाहता हूं कि जो इन्वेस्टमेंट की जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर, वो फिर अब मैं उसी बात को कनेक्ट करूंगा जो मैंने अभी यहां से हमने अभी ये बातचीत शुरू की थी कि हमें स्ट्रेंथ दिखानी है अब, और वो किसी को दिखाने के लिए भी नहीं है माजिद भाई, वो हमारे अपने लिए है। क्योंकि हम रिटायर हो जाएंगे एज 60 के ऊपर, 65 के ऊपर हम रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो कैनेडियन डेटा के हिसाब से एज आपको 15-20 साल तो यूजुअली लोगों को रहना है, जो यहाँ का लाइफ साइकिल है लाइफ स्पैन है जितनी एज है यहाँ पर उसके हिसाब से। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छे तरीके से इज्जत से गुजारा कर सकें तो सेविंग्स के बाद हमको इन्वेस्टमेंट करनी है, और इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उसका फल जो है उसका फ्रूट हमें उसी वक्त ही फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू होता है। इसमें एक चीज मैं अब और ऐड करूं कि हमारे पास से क्या बेनिफिट मिल सकता है आपको, ये इतनी सारी जो मैंने बातचीत की है, मेरे पास माजिद भाई हर तरह के प्लान मौजूद हैं। जो लोग ये चाहते कहते हैं कि यार हमको इस वक्त को मंथली इनकम की जरूरत है, तो मेरे पास उनके लिए मंथली इनकम प्लान मौजूद हैं। कुछ लोग ये कहते हैं नहीं आज हमें जरूरत नहीं है, हम अभी इनकम हमारे पास आ रही है, सैलरी हमारे कुछ पैसे हैं, 50,000-1,00,000 डॉलर ये अपने किसी प्रोजेक्ट में लगा दीजिए जहां से हमको लॉन्ग टर्म रिटर्न आए, कैपिटल ग्रोथ आए, उसके लिए हमारे पास प्रोजेक्ट मौजूद हैं। आपने करना यह है कि मेरा नंबर सेव कीजिए, मेरा नंबर है 416-301-0249, 416-301-0249। इस नंबर को अपने पास अभी सेव कर लीजिए, प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कर लें, अपॉइंटमेंट बना लें, ओपन माइंड रखिए, आपने कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आप आइए मेरे पास ऑफिस में, जानिए कि मैं क्या ऑफर कर रहा हूं, आपको कैसे बेनिफिट उस ऑफर का मिल सकता है, और फिर आपको समझते हैं कि नहीं यार इस पे हमें परसू करना चाहिए, तो आइए, ये टाइम है, घड़ी के टिक 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 चले जा रही है, रुक नहीं रही है, ना कभी रुकेगी, आपका डिसीजन आप अपने टाइम के हिसाब से लीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है ना, जितनी जल्दी लेंगे इसका बेनिफिट उतना ही ज्यादा होगा। जी माजी भाई,
416-301-0249, 416-301-0249 जनाब अदनान अलवी साहब का फोन नंबर है, प्रेसिडेंट है लाइफ टाइम ग्रुप के, और कंडीशन सिर्फ यही है, मैं हमेशा आपसे कहता हूं एक ही कंडीशन है कि आप इनको कॉल करें, इनसे बैठें, इनसे बातचीत करें, चाहे आप अकेले बैठें या मैं तो हमेशा एडवाइस करता हूं कि आप अपनी बेगम को और अपने बच्चों को, बड़े बच्चों को लेके साथ बैठे, कई सवालात होंगे आपके, वो जवाब देंगे, व्हेन यू आर सेटिस्फाइड टेक एडवांटेज ऑफ दिस। 416-301-0249 इनका फोन नंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका,
थैंक यू माजिद भाई, इंशाल्लाह हम फिर बात करते हैं अपने लिसनर्स से नेक्स्ट वीक में,
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सब डिले हो गया, हम जरा पीछे जा रहे हैं, फयाज वलाना साहब हमारा वेट कर रहे हैं और फयाज वलाना साहब से हमने आपकी बातचीत करवानी है। कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम लेता हूँ, प्रोग्राम में वापस आएंगे विद फयाज वलाना साहब एंड वील टॉक अबाउट पाकिस्तान के हालात।
नान कबाब, मॉडर्न अफगानी किचन, लजीज अफगानी ग्रिल कबाब, चपली कबाब, चौपान कबाब, लैम्ब शैंक, चिकन कोरमा प्लेट, फैमिली प्लेटर, कबाब रैप, फ्राइज, मंटू, बोलानी, फिरनी और सबके लिए बहुत से मजेदार खाने।
अब आपके शहर में मिसिसागा में एक और नई लोकेशन के साथ 5042 सैटेलाइट ड्राइव यूनिट F3 मिसिसागा। For orders and reservations, visit nankebab.ca.
अदनान अलवी, प्रेसिडेंट लाइफ टाइम ग्रुप। अदनान अलवी को कौन नहीं जानता, आप पिछले 15 सालों से अपनी कम्युनिटी को एजुकेट कर रहे हैं कि किस तरह अपनी इनकम और अपनी वेल्थ को इंक्रीज किया जा सकता है। आपके लिए हमेशा यूनिक और इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट आइडियाज लेकर आते हैं। अगर आप आज की बदलती हुई रियल एस्टेट मार्केट से परेशान हैं और चाहते हैं कि आप अपने पैसों को ज्यादा सिक्योर रखते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट बनाएं, तो आज ही अदनान अलवी से राब्ता करें। 416-301-0249।
क्या आप एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और आपको बेहतरीन लॉयर की तलाश है? हेमोफार प्रेजेंस की आपके लिए एक जाना पहचाना लॉयर है और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपके मसलों को उन तक पहुंचाती हूं। हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। कार एक्सीडेंट में आपका मशवरा लेना आपका कानूनी हक है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। जी हाँ, 416-570-0157।
अदनान अलवी, प्रेसिडेंट लाइफ टाइम ग्रुप। अदनान अलवी को कौन नहीं जानता, आप पिछले 15 सालों से अपनी कम्युनिटी को एजुकेट कर रहे हैं कि किस तरह अपनी इनकम और अपनी वेल्थ को इंक्रीज किया जा सकता है। आपके लिए हमेशा यूनिक और इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट आइडियाज लेकर आते हैं। अगर आप आज की बदलती हुई रियल एस्टेट मार्केट से परेशान हैं और चाहते हैं कि आप अपने पैसों को ज्यादा सिक्योर रखते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट बनाएं, तो आज ही अदनान अलवी से राब्ता करें। 416-301-0249।
अदनान अलवी, बस एक ही नाम, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स करना जिनका काम।
جی صاحب ناظرین ویلکم بیک اگین اینڈ 5:34 اور 48 سیکنڈ ہماری گھڑیوں میں ہو چکے ہیں اور صاحب اب میں آپ کو لیے چلوں گا. پہلے سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں جناب فیاض بلانا صاحب سے کہ دیر ہو گئی, ہم آج پیچھے چل رہے ہیں اپنے پروگرام میں. فیاض بلانا صاحب جیسے آپ کو معلوم ہے از اے ویری ویل نون ویری ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں یہاں پر اور پاکستان سے بھی یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں. ہی از گاٹ اے ایکسٹریم ڈیپ نالج آف واٹس ہیپننگ ان دا ورلڈ. تھینک یو جناب فیاض بلانا صاحب اس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں آپ. سب سے پہلے تو سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیاض بھائی کیسے ہیں آپ؟
وعلیکم السلام اور آپ کا تمام پروگرام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. الحمدللہ آپ کی دعا چاہیے, لیکن آپ یہ جو پروگرام پیچھے پیچھے کر رہے ہیں اس سے مجھے لگتا ہے آپ کے پاس ایڈز کافی آ گئے.
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. نہیں آج پتہ ہے کیا ہوا کہ وہ تھوڑی سی پاکستان اور کینیڈا اور امریکہ کے بارے میں بات چیت شروع ہو گئی, کالرز آ گئے اور ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کالرز جو بیچ میں آ گئے نا ہمارے, تو اس کی وجہ سے ذرا ہم پیچھے ہو گئے. میں کالرز کے کال بھی دے رہا تھا اور جن کے کالز نہیں لیے ان سے معذرت چاہتا ہوں. تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ ہم بڑے اسکویز ٹائم میں گزر رہے ہیں ابھی. اس کے فوری بعد شاذ جی اپنی خبریں لے کے آئیں گی اور اس کے بعد بھولی بسری یادیں. تو آئی سیڈ ویری ٹائٹ اسکیجول, لیٹس گو وتھ دس واٹس ہیپننگ ان پاکستان. تو ہمارے پیارے ملک پاکستان میں میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کمپیئر کریں صاحب آؤٹ گوئنگ ان کمنگ چیف جسٹس آف پاکستان, کیا کہیں گے آپ؟
اوور آل تو جو ہمارا پاکستان کی عدلیہ کا ایک تاثر ہے ہم کہ جی یہ ورلڈ میں اگر 139th نمبر پہ ہیں تو وہ کسی ایک جج کے کسی ایک عدالت کے کسی ایک عدالت کے ایک فیصلے کی وجہ سے نہیں ہوا. یہ ایک کلیکٹیو رائے ہے, ایک اوور آل رائے ہے اور اس میں ٹائم لگتا ہے. رائے کسی بھی قوم کے بارے میں کسی ادارے کے بارے میں کسی کمیونٹی کے بارے میں بننے میں ٹائم لگتا ہے, سال ہا سال کی اس میں ان کی محنت ہوتی ہے. اور اگر اتنا نیچے ہمارا گراف ہے ہماری عدلیہ کا تو اس میں ان سب لوگوں کی محنت ہے. یہ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال ہوں یا ان کمنگ ہوں, آؤٹ گوئنگ جو ہیں وہ بھی کوئی تقریباً 25-30 سال 35 سال سرو کر کے جا رہے ہیں, جو ان کمنگ ہیں وہ بھی تقریباً 28-30 سال وہ بھی کر چکے ہیں اور آخری 3 سال 1.5 سال ان کو موقع ملے گا سرو کرنے کا. تو یہ سرو کرتے آئے ہیں, ان سب لوگوں کی مہربانیوں کی وجہ سے آج ہمارا گراف اتنا ہماری عدلیہ کا اتنا نیچے ہے, کیونکہ ان لوگوں نے اس طرح قانون کا احترام لوگوں کو بتاتے تھے لیکن انہوں نے خود نہیں کیا اور انہوں نے بہت زیادہ نرمی برتی. فار ایگزامپل آؤٹ گوئنگ ہمارے عمر عطا بندیال صاحب, ان کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ وہ ان کا تاثر یہ ہوگا کہ وہ ایک ایسے جج تھے جن کے جو پریشر برداشت نہیں کر سکے تھے. وہ ایسے جج تھے کہ جو گڈ ٹو سی یو کا لولی پاپ دینے والے جج تھے. ان کے وہ ایک ایسے جج تھے کہ جنہوں نے مریم نواز شریف جیسی نو آموز اور نا تجربہ کار سیاسی رہنما سے بھی انہوں نے وہ سنا اور انہوں نے مریم نواز نے ایسے ایسے باؤنسر مارے اس چیف جسٹس آف پاکستان کو اور ان کے ساتھ سینئر ترین جج جو ہیں جسٹس اعجاز الحسن اور ایک اور جسٹس تھے منیب اختر شاید, ان کی باقاعدہ جلسوں میں تصویریں ڈسپلے کر کے مانیٹر پہ اور انہوں نے برا بھلا کہا مریم نواز نے, اور اس وقت بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے کان پہ جون تک رہی رہیں گی. حالانکہ جب وہ یہ سپیچز کر رہی تھیں تو ایک عام آدمی میرے جیسا وہ دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ یہ مریم کیا کر رہی ہیں, یہ مریم کیا اس شی آؤٹ آف ہر مائنڈ, کیا وہ پاگل ہو گئی ہیں؟ اس طرح ایک سٹنگ چیف جسٹس اور اس کے سینئر ترین ججز کے بارے میں اس طرح کسی جلسے میں بات کی جا سکتی ہے؟ انہوں نے کی نہیں, تصویریں دکھا کے بات کی. اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آج ہی شام کو نوٹس ہو جائے گا اور کل صبح مریم نواز کو چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ اپنی عدالت میں طلب کر لیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ ہاں بی بی تمہیں کیا مسئلہ ہے, تم ایک بھرے جلسے میں جہاں ہزاروں لوگ جلسہ سن رہے ہیں جلسے میں موجود ہیں باقی جو ہیں وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے براہ راست سن رہے ہیں اور تم وہاں پاکستان کی سینئر ترین عدلیہ کو برا بھلا کہہ رہی ہو, اسے توہین عدالت کا نوٹس ہوگا اور اسے طلب کیا جائے گا اور اسے جواب مانگا جائے گا. لیکن کچھ نہیں ہوا, میرے سارے خواب خواب ہی رہے. اسی طرح اور بھی جہاں جہاں جس جس نے ان پہ تنقید کی انہوں نے کچھ نہیں کیا, اور آج جاتے ہوئے یہ دعا مانگ رہے ہیں اپنی آخری اسپیچ میں کہہ رہے ہیں کہ مولا مجھے اچھے ناموں سے یاد کیا جائے, میں اپنے مولا سے اپنے رب سے اپنے خدا سے دعا مانگتا ہوں کہ میں جا رہا ہوں یہ آفس چھوڑ کے تو مجھے اچھے نام سے یاد کیا جائے. عمر عطا بندیال صاحب آپ کو کیسے اچھے نام سے یاد کیا جائے؟ आप पे इल्ज़ाम यह है कि आप पीटीआई के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, आप पे इल्ज़ाम यह है कि आपकी सास साहिबा जो हैं वो पीटीआई की बहुत डाई हार्ट किस्म की फॉलोअर हैं इमरान खान की, और उन्होंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ा, वो मैसेज लीक हो गया कि उन्होंने आपको कहा था कि इमरान के हक में फैसला दो। आप पे ये इल्ज़ाम हैं कि आपकी फैमिली के लोग जो हैं वो पीटीआई के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। आपने कोई वजाहत नहीं की, आपने कुछ नहीं बताया, आपने सिर्फ खामोशी इख्तियार की, आपको लोगों ने बुरा भला कहा, आपने खामोशी इख्तियार की, आप पे तनकीद गई, आपने खामोशी इख्तियार की, आपके फैसलों की धज्जियां उड़ा के रख दी गई, आपने खामोशी इख्तियार की। 90 दिन के इलेक्शन का आज भी आप अपनी आउटगोइंग स्पीच में आप कह रहे हैं कायदे कानून में लिखा हुआ है जबकि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, तो फिर बार बार ये तकरार क्यों होती है हजूर? ये तकरार इसलिए होती है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, पंजाब के भी नहीं हुए, केपीके के भी नहीं हुए, और अब फेडरल हमारी कौमी असेंबली जब से तोड़ी है शहबाज शरीफ साहब ने सोच समझ के, हालांकि अगर कोई बंदा आपके पास आता और आपसे पूछता कि इनसे पूछा जाए कि ये दो दिन पहले असेंबली क्यों तोड़ रहे हैं, इनके पास रीजंस क्या हैं दो दिन पहले तोड़ने की, और दो दिन बाद अगर असेंबली मुद्दत पूरी कर लेती तो फिर क्या फर्क पड़ जाना था, लेकिन आपने किसी ने नहीं पूछा। ये जो कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी पाकिस्तान में, और जिस तरह कानून को मोम की नाक बना के अपनी मर्जी के मुताबिक चलाया जा रहा था, आप खामोश रहे अता बंदयाल साहब। अब आप जाते हुए मौला से ये दुआएं मांग रहे हैं, आपको कैसे अच्छे अल्फाज में लोग याद करें, आपको तारीख के कमजोर तरीन जज के तौर पर याद रखा जाएगा। और ये आज मैं कह रहा हूं, कल आने परसों तरसों तक अखबारात में आर्टिकल्स आना शुरू हो जाएंगे, डिस्कशन शुरू हो जाएगी, और आपके पूरे स्टेन्योर को इसी तनाजर में देखा जाएगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर सके थे प्रेशर। और आपको वो भी याद होगा कि जिस रात इमरान खान की गवर्नमेंट गई थी, आप वो जज थे जिन्होंने रात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रात 12 बजे आपने खुलवा ली थी, और आपके रात 12 बजे क्योंकि आप पे प्रेशर था, कहीं कहां से था सारी दुनिया को मालूम है, बार बार उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप पे प्रेशर था कि इमरान खान की हुकूमत को चलता करना है, आप पे प्रेशर था, आपने रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे खोले, और आपके दरवाजे खोलने की वजह से उस वक्त के जो स्पीकर कौमी असेंबली थे असद कैसर साहब, उनके वो बारे से हवा निकली और वो प्राइम मिनिस्टर हाउस भागते भागते गए और इमरान खान के सामने जाके उन्होंने हथियार डाल दिया और उन्होंने कहा आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर, मैं नहीं कर सकता, हमें रिजाइन करना पड़ेगा, और फिर इमरान खान को रिजाइन करना पड़ा। तो बेसिकली यू आर द रीजन, यू आर द पर्सन कि आज इमरान खान अटक जेल में है, आप वो लोग, आप वो साहब हैं, आपकी वजह से ये पिछले 16 महीने में जो पाकिस्तान में महंगाई हुई है, जो बेरोजगारी हुई है, जो हम इंटरनेशनली हमें बिल्कुल आइसोलेट करके रख दिया गया है, सिर्फ आपकी वजह से, और पाकिस्तान में जो अनसर्टेनिटी है पिछले 16 महीने की उसके जिम्मेदार आप हैं, और फिर आपकी वजह से इसहाक डार साहब तशरीफ लाए लंदन से इस्लामाबाद, और आके उन्होंने अपने पिछले 4-4.5 साल की तनख्वाहें करोड़ों रुपए में वसूल की, उन्होंने अपने घर वाप गुजार कराया, आपकी वजह से, आपकी नरमी की वजह से 11,000 अरब रुपए के करप्शन के केसेस माफ कराए, आपकी नरमी की वजह से नैब में वो 34 तरामीम हुई जो वो करना चाहते थे, जो इमरान खान की पूरे 4 साल की हुकूमत के दौरान उनकी मिन्नतें करती रही अपोजिशन, इमरान खान ने कहा कि ये ज्यादती है, नैब एक इदारा बना हुआ है अगर अकाउंटेबिलिटी के लिए तो उसे काम करने दें, आपने उन्हें फैसिलिटेट किया, आप फैसिलिटेटर थे, आप सहूलतकार थे, आपको कभी अच्छे अल्फाज से याद नहीं किया जाएगा। मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलता, आप इनकमिंग पे बात करते हैं। काजी फायज ईसा साहब, इनका एक अच्छा इंप्रेशन है और उन्होंने अब तक इंप्रेशन बना के रखा हुआ है अपना कि मैं सिविल लिबर्टीज के हवाले से और बुनियादी शख्सी जमहूरी आजादियों के हवाले का मैं चैंपियन हूं, और उन्होंने स्पेशली जो फैजाबाद धरने के बारे में उस वक्त जो उन्होंने एक फैसला दिया था और उन्होंने जो रिमार्क्स पास किए थे, डायरेक्ट अटैक था हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे, उस वक्त से लोगों ने उम्मीदें लगा रखी हैं काजी फायज ईसा साहब से कि शायद काजी फायज ईसा साहब आएंगे तो वाकई पाकिस्तान में हर तरफ हरा हरा नजर आएगा। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा, काजी फायज ईसा साहब की कोशिश होगी कि वो थोड़े से वक्त में, उन्हें जो तकरीबन 1.5 साल का टाइम मिल रहा है, इसमें वो कांटों से बचते बचाते हुए मैक्सिमम डिलीवर करके जाएं, और वो जो ये जिस तरह की इस्लाहात वो अदालती निज़ाम में देखना चाहते हैं वो उस तरह की अदालती इस्लाहात करके जाएं। हाँ, वो उलझ जाएंगे उस वक्त अगर उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है सींग अड़ा अपने फंसा लिए, अगर उन्होंने सियासी मामलात में अपने आप को एक तरफ इंक्लाइंड कर लिया, क्योंकि सियासी मामलात में अगर वो पड़ेंगे तो उन्हें एक तरफ होना पड़ेगा, या इमरान खान के साथ होना होगा या इमरान खान के खिलाफ होना होगा, और इमरान खान के खिलाफ होंगे तो वो यकीनन मियां नवाज शरीफ की साइड उन्हें लेनी पड़ेगी। अगर वो मियां नवाज शरीफ की साइड लेंगे, क्योंकि जरदारी साहब तो इस वक्त मेन कंटेंडर नहीं है, मेन कंटेंडर तो इमरान खान और नवाज शरीफ ही हैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए, अगर वो साइड किसी एक ही भी लेंगे तो वो फिर मुतनाज़े हो जाएंगे और फिर उन पर भी इसी तरह उंगलियां उठेंगी, और जब ये होगा तो फिर जाहिर है पिंडी बॉयज हमारे जो है वो भी उन्हें प्रेशराइज करेंगे, वो पहले ही अंडर प्रेशर है। उन पे जो केस बना था उनकी मिसेज सरीना फायजीसा के हवाले से, जो उन्होंने अपने बच्चों को लंदन में भेजा था पढ़ने के लिए और वहां उन्होंने फ्लैट खरीदा और वो फ्लैट डिक्लेयर नहीं किया, पैसे कैसे ट्रांसफर हुए वो बात नहीं एक्सप्लेन कर सके, और जब उनके खिलाफ केस आया था इमरान खान की गवर्नमेंट में, बाद जहां इमरान खान ने भी कहा कि हमने गलत किया था, प्रेजिडेंट अलवी साहब ने भी कहा कि मुझे जुडिशल रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था, गलत किया था, उस वक्त के वजीरे कानून जो एमकेएम के थे, जो आज भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गोद में है, नसीम फरोख साहब, उन्होंने ज्यादती की थी, सारा कुछ जो हुआ। लेकिन क्या इस सवाल का जवाब कोई ले सका या उन्होंने दिया काजी फायजी साहब ने कि वो पैसे कैसे पाकिस्तान से ट्रांसफर हुए थे और वहां पहुंच के उन्होंने वो अगर एक महंगा अपार्टमेंट लंदन में ले लिया था तो उसको उन्होंने डिक्लेयर क्यों नहीं किया था, और अगर बच्चों के पढ़ने के लिए था तो वापस बच्चे पढ़ के वापस आ गए तो फिर वो उस प्रॉपर्टी का क्या हुआ। आप इन सवालों के जवाब नहीं दे सके थे और ये केस खत्म नहीं हुआ था, दबा दिया गया था और दबाया उस दिन गया था जिस दिन सरीना फायजा ईसा ने कोर्ट के अंदर खड़े होकर जज साहबान के एक एक तीनों जज साहबान की तरफ उंगली के इशारे से कहा था कि मैं हिसाब दे दूंगी लेकिन कल आपको भी और आपको भी हिसाब देना होगा कि आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं और आपकी कहां कहां जायदादें हैं और आपकी प्रॉपर्टीज कहां कहां हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपने डिक्लेयर की हुई हैं और कौन सी नहीं की हुई। इस धमकी के बाद वो केस दबा दिया गया था क्योंकि जज साहबान जो मौजूद जज साहबान वहां बैठे हुए थे उन्होंने ये फील किया था कि ये सरीना तो शायद हमारे पीछे पड़ गई हैं, तो वाकई ये बात ठीक है, तो फिर वो केस वहां दबा था, खत्म नहीं हुआ। अब अगर ये दोबारा इन्होंने इस तरह का फायज ईसा साहब ने कोई कोशिश की अपना जो सिविल लिबर्टीज के चैंपियन बनने की, उनकी एक है भी और होना भी चाहिए उन्हें, अगर कोई उन्होंने मूव इधर उधर की तो यकीनन पिंडी वालों के पास ये वही केस नहीं और बहुत कुछ होता है। आपको पता है अगर उम्रता बंदियाल सिटिंग जज चीफ जस्टिस हैं, उनकी सास की जो टेलीफोन कॉल जो है वो अगर लीक हो सकती है तो इनकी भी कई टेलीफोन कॉल्स होंगी और इनकी भी सास साहबा और इनके भी जो रिश्तेदार हैं उनके मुंह में भी जबान है, वो भी बोलते होंगे, बात करते होंगे, उनकी भी कोई राय होगी। तो ये काजी फायजी साहब के लिए टफ दिन आने वाले हैं लेकिन वो कोशिश करेंगे कि वो बच बचा के मैक्सिमम डिलीवर करके जाएं। हाँ, आउटगोइंग वाले दिन एक मसला हुआ इस्लामाबाद में कि इनकी फेयरवेल पार्टी थी अपने उम्रता बंदियाल साहब की, तो वहां हमारे इस्लामाबाद के सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले नासिर इकबाल के बाद सेकंड सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं कयूम सिद्दीकी साहब, जंग और जियो को कवर करते हैं। उन्होंने उनके साथ जब अताब बंदियाल साहब के साथ सारे जर्नलिस्ट फोटो बना रहे थे तो कयूम सिद्दीकी साहब साइड पे खड़े थे, तो उम्र अताब बंदियाल साहब ने उन्हें कहा कि सिद्दीकी साहब आए आप भी फोटो बनवाएं, तो कयूम सिद्दीकी साहब ने कहा नहीं मैं नहीं बनवाना चाहता। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा मैं इसको काबिल फख्र नहीं समझता कि मैं आपके साथ खड़े होकर तस्वीर बनाऊं। ये एक तमाचा था जो एक रिपोर्टर ने, एक सहाफी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुंह पे मारा, सबकी मौजूदगी में मारा, और अभी वो सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और हैं, पर कल तक हैं, परसों तक होंगे। तो ऐसा अगर एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक इस्लामाबाद का सहाफी खड़े होकर ये कहता है और भरे मजमे में कहता है तो मेरे ख्याल में उमर अताब बंदियाल साहब को उसी दिन अपना रिजल्ट कार्ड उनके हाथ में आ गया होगा कि उन्होंने क्या रवैया रखा। हालांकि कयूम सिद्दीकी साहब, मेरी अच्छी उनसे एलोआ है, दोस्त हैं, माइंड कर जाएंगे, लेकिन कयूम सिद्दीकी साहब सॉरी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था और स्पेशली एक मजमे में नहीं करना चाहिए था। आपको तो अकेले में वन टू वन मिलने के चांसेस मिलते हैं, फिर आपको मिलने की जरूरत भी नहीं है, आपके हाथ में अखबार है, आपके हाथ में माइक है, आप टेलीविजन पे जो रिपोर्ट करना चाहते हैं करें, आप अखबार में जो लिखना चाहते हैं करें, आप जो तनकीद बतौर जर्नलिस्ट करना चाहते हैं अपने मीडियम को यूज करके वो करें, लेकिन किसी मजमे में किसी को इस तरह बेइज्जत करना शायद ये बहुत ज्यादा हो गया था, आपने ज्यादा किया था। और मेरे ख्याल में आपने उमर अताब बंदियाल साहब के लिए नहीं किया था, आप एक्चुअली काजी फायज ईसा साहब को खुश करना चाहते थे और ये रिपोर्ट उन तक पहुंची होगी तो काजी फायज ईसा साहब और उनकी मिसेज सरीना, क्योंकि आप बहुत करीब हैं दोनों के, आप वहां से आपको शाबाशी आई होगी कि आपने अच्छा किया। बेसिकली आप अताब बंदियाल साहब को वो नहीं कर रहे थे, आप काजी फायज ईसा साहब को खुश करना चाहते थे। एक तो रवैया ये होगा, अब आपको याद होगा जब काजी फायज ईसा साहब का केस चल रहा था तो उस वक्त एक दिन अदालत में काजी फायज ईसा साहब मौजूद थे, एज ए वहां साहिल गए हुए थे अपनी मिसेज के साथ और वो केस भुगत रहे थे, तो वहां बोल के रिपोर्टर सदीक जान कवरेज के लिए आए थे और सदीक जान के बारे में एक तासर यह था कि शायद ये प्रो पीटीआई है, प्रो इमरान खान है और शायद ये काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ बहुत उस तरह की करता है रिपोर्टिंग जो उन्हें पसंद नहीं है। हालांकि जान सदीक जान कहता है कि मैंने कभी ज्यादती नहीं की, मैं तो फैक्चुअल रिपोर्टिंग करता हूं। तो काजी फायज ईसा साहब अचानक कोर्ट में उठ के सदीक जान के पास आए और आके तमाम रिपोर्टर्स और वहां वकला मौजूद थे उनके सामने आके करीब आके कहते हैं कि तुम अपने आप को समझते क्या हो। जब उन्होंने ये कहा तो सदीक जान और तमाम वहां मौजूद रिपोर्टर्स हैरान हो गए कि एक मुअज्जज जज सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर तरीन जज, सेकंड सीनियर तरीन, अब वो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं कल परसों, उनको ये कैसे उन्होंने सोचा कि वो अदालत में आके एक रिपोर्टर को कहें कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, मैं तुम्हें देख लूंगा। तो ये रवैया अगर उस वक्त आज कयूम सिद्दीकी साहब का अच्छा नहीं है तो उस वक्त काजी फायज ईसा साहब का भी सदीक जान के साथ अच्छा नहीं था। हाँ, हमारे जर्नलिस्ट भाइयों को भी गौर करना चाहिए कि वो अगर किसी पे तनकीद करें तो एक लिमिट में रहें और वो लिमिट जो हमें बताई गई है कि आपने आर्मी और अदलिया को एक लिमिट, एक हद के अंदर रह के तनकीद करनी है, उससे ज्यादा नहीं करनी। हाँ, आप हुक्मरानों पर तनकीद जितना करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप ब्यूरोक्रेट्स पे कर सकते हैं, आप इंतजामिया पे कर सकते हैं, आप पार्लियामेंट पे जितनी तनकीद करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे हैं, उनके पास ये सहूलत है कि वो वापस आके अपना मौकफ दे सकते हैं, अपनी वजाहत दे सकते हैं, अपने आप अपनी पोजीशन क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जज साहबान और आर्मी के जो अफसरान होते हैं, जर्नैल वगैरह, उनके पास ये सहूलत नहीं होती कि वो फौरन किसी टेलीविजन पे आ जाएं, फौरन किसी अखबार में आके अपना बयान दे दें, या फौरन रेडियो पे आके अपनी वजाहत कर दें। इसलिए हमें तनकीद करते हुए एक लिमिट में रहना चाहिए। लेकिन जो सदीक जान के साथ हुआ, या जो कयूम सदीकी और उमर अता बंदियाल वाला जो सिलसिला हुआ, ये भी नहीं होना चाहिए। हमारे मीडिया को भी अपनी लिमिट में रहना चाहिए, और मीडिया को डील करते हुए उन साहबान को मीडिया की भी लिमिट्स देखनी चाहिए कि ये रिपोर्टर्स हैं, ये सहाफी हैं, आप सीनियर तरीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं या टू बी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, आपको भी ये जेब नहीं देता कि आप रिपोर्टरों के साथ सींग फंसा के बैठ जाएं। आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं, कल तक तो सींग आपके कहीं और फंसने हैं, और अल्लाह ना करे उस तरह फंस जाएं जिस तरह पहले फंसे हुए थे पहले वालों के, क्योंकि इस तरह सींग फंसाने से ही आपका जो वकार है हमारा पाकिस्तान का और हमारी अदलिया का, वो इंटरनेशनली 139 पे जाता है। अगर इसे हमने बेहतर करना है तो हमें हम में से सबको अपने अपने गिरेबान में जाके अपनी इसलाह करनी होगी। जी
मैं मेरा अगला सवाल जो है जनाब मोहम्मद अली दुरानी एंड प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का क्या रोल है?
ये बड़ा दिलचस्प कहानी बनी है, मोहम्मद अली दुरानी वाली और आरिफ अलवी साहब वाली। लोग समझ रहे हैं कि मोहम्मद अली दुरानी साहब कोई सुलह कराने के लिए जा रहे हैं इमरान खान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ। हमें ये देखना चाहिए, मेरा प्रोग्राम रेगुलर देखने वाले जानते हैं कि मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में हर वक्त जॉब सीकर्स की एक लॉट मौजूद होती है, और वो जॉब सीकर्स जो हैं वो कभी कमर दिलशाद साहब की तरह टेलीविजन पर बैठ के बड़ी सख्त सख्त तनकीद करते हैं, और फिर अचानक जब उन्हें पंजाब का केयर टेकर मिनिस्टर बना दिया जाता है तो अगले दिन ही सब शांत हो जाते हैं, और वो उसके बाद से उन्हें सब हरा हरा नजर आना शुरू हो जाता है, सब ठीक होता है। अब वो पिछले 4-6 महीने से मोहसिन नकवी साहब की कैबिनेट में हैं, और इस वक्त उनसे पूछा जाए तो उनके ख्यालात टोटली डिफरेंट होंगे, और जब वो केयर टेकर मिनिस्टर नहीं बने थे उससे पहले उनके मुंह से आग निकलती थी। इसी तरह मुर्तजा सोलंगी साहब जो हमारे निगरान वजीर इतलात हैं फेडरल काकड़ साहब की कैबिनेट में हैं, ये भी जब तक इन्हें भी सरकारी जॉब नहीं मिली थी बतौर मिनिस्टर, उससे पहले ये भी इनके मुंह से भी आग ही निकलती थी पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के मामलात और हालात के हवाले से। मोहम्मद अली दुरानी साहब भी उसी जॉब सीकर्स की लॉट में हैं, बड़े अरसे से गायब हैं, और अब ये शायद इन्हें जॉब चाहिए और दोबारा जॉब लेने के लिए गुड बुक्स में आना चाहते हैं। गुड बुक्स ये पिंडी वालों की तो बड़े अरसे से गुड बुक्स में है, अब वो शायद इमरान खान के गुड बुक्स में भी आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि आंदा इलेक्शन की सूरत में इमरान खान ने आ जाना है तो फिर चांस लग जाएगा, मिनिस्टर बन जाऊंगा, सेनेटर बन जाऊंगा, कुछ हो जाऊंगा। अगर वो कोशिश कर रहे हैं, अगर वो वाकई जिस तरह कह रहे हैं खुलूस नीयत से कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन मोहम्मद अली दुरानी साहब का तारुफ जरा कराते जाएं कि मोहम्मद अली दुरानी साहब बहुत पुराने नहीं हैं इस लिहाज से कि उनका अचानक एक नमूदार हुए थे जब अफगानिस्तान से पहली दफा तालिबान की गवर्नमेंट आ रही थी और रशिया नाकाम होकर वापस लौट रहा था। तो अफगानिस्तान में क्योंकि जमात इस्लामी हमारी जो है इसका वहां काफी अमल दखल था, इनके मुजाहिदीन भी वहां गए और जमात इस्लामी का वहां हज़्ब इस्लामी वालों से भी और दूसरी जमातें हैं गुलबदीन हिकमतयार और अब्दुल रसूल सियाफ और जितने वहां इस तरह के लीडरान थे हमारे अफगानिस्तान के, उनके साथ ताल्लुकात इनके अच्छे थे, और उन ताल्लुकात अच्छे होने की वजह से उस वक्त काजी हुसैन अहमद साहब जमात इस्लामी को लीड करते थे, तो मोहम्मद अली दुरानी साहब क्योंकि बिजनेस माइंड हैं तो ये वहां अफगानिस्तान में गए तो वहां स्क्रैप का इन्होंने सारा सिलसिला अपने जिम्मे ले लिया कि ये स्क्रैप यहां से सारा इकट्ठा करके हम इसे दुबई भेजेंगे और वहां से फिर वर्ल्ड मार्केट में बेचा जाएगा। तो वो सिलसिला काजी साहब को भी अच्छा लगा, काजी साहब ने कहा ठीक है गो हेड। तो मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कुछ इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर पूरे अफगानिस्तान से वो स्क्रैप इकट्ठा किया और फिर दुबई भेजना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर इनके चेहरे पे इनके गालों पे लाली नजर आना शुरू हुई, और बाद में बताया जाता है कि वो लाली जो है जो इनके चेहरे पे ज्यादा नजर आ गई, इनके जो बाकी बिजनेस पार्टनर थे उनमें से कुछ जो है वो कुछ शरीफ लोग थे, कुछ बारिश थे, कुछ बड़े बड़े ओहदे रखने वालों थे, कुछ इस्लामी सियासी तंजीमों के बड़े बड़े थे, तो वहां कोई बंदर बांट में मसला हो गया था तो फिर इन्होंने अचानक छोड़ दिया उस सारे सिलसिले को और फिर गोशे गुमनामी में चले गए। हालांकि उससे पहले ये पासबान के भी सरबराह ये रहे, शबाब मिल्ली के भी ये रहे, और भी इनका बड़ा अमल दखल था, लेकिन फिर वो पैसे इतने ज्यादा हो गए थे कि उसकी बंदरबाट में जब लड़ाई हुई दोस्तों में तो ये फिर गोशा नशीनी इन्होंने इख्तियार कर ली, और फिर ये नमूदार हुए दोबारा जब परवेज मुशरफ साहब इकतदार में आए और फिर ये परवेज मुशरफ साहब के उसमें सामने आए। फिर आपको याद होगा कि एक दफा नवाज शरीफ साहब बहुत जब मुश्किल में आ गए और शहबाज शरीफ भी और पूरी उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई शुरू हो गई, तो ये फिर एकदम अचानक सामने आए मोहम्मद अली दुरानी साहब और जेल में जाके मिले नवाज शरीफ से और फिर एस्टेब्लिशमेंट से मिले। अब इन्होंने दोबारा इमरान खान के लिए बाहर निकले हैं और आरिफ अलवी से मिले हैं और कह रहे हैं मैं सुलह करा दूंगा एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान की। उन्होंने वही फार्मूला बताया कि मैं नवाज शरीफ से जेल में मिला था और मैंने नवाज शरीफ से जाके कहा था कि आपने अगर बाउंसर मारना है तो आपने इमरान खान के सर में मारना है, आपने अंपायर के सर में बाउंसर नहीं मारना। यही फार्मूला अब मैं पीटीआई की लीडरशिप को कह रहा हूं कि आपने अगर बाउंसर मारना है तो आपने अपने मुखालिफ सियासतदान जो हैं, चाहे नवाज शरीफ हैं, जरदारी हैं, कोई भी है, उनको बाउंसर कराने हैं। आपने अंपायर के सर में बाउंसर नहीं मारना, अंपायर का सर जख्मी नहीं करना। फार्मूला उनका अच्छा है, देखें ये फार्मूला आगे चल के कहां तक काम बनता है, लेकिन फिलहाल तो सिर्फ उनकी एक कोशिश है कि मेरी थोड़ी सी एंट्री हो जाए और इस एंट्री के दौरान ही इस केयर टेकर सेटअप में मुझे कोई जॉब मिल जाए, या ये नहीं तो इलेक्शन के बाद अगर इमरान खान जीत के आ जाए तो इमरान खान के सेटअप में मुझे कोई जगह मिल जाए। तो बेसिकली ये कोशिश है, कोशिश उनकी अच्छी है, दुआ करनी चाहिए कि वो कामयाब हो जाए।
टाइम की कमी की वजह से जरा क्विक मेरे के सवाल के जवाब दे दें तो बेहतर है। आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या कंफ्यूजन है कि वो आर दे विलिंग टू कम फॉर इलेक्शन इन 90 डेज और नॉट?
नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले पिछली दफा जब हुकूमत इमरान खान की जा रही थी तो उस वक्त उन्हें लग रहा था कि शायद इमरान खान जो है जा रहा है और हुकूमत मिलने का चांस बन रहा है, तो वाई नॉट, सिंध में तो है, फेडरल में भी ले लें। तो उस वक्त वो जंप कर गए, एक गलत शिप पे, गलत ट्रेन पे चढ़ गए। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि ये सारा जो बयानिया है इमरान खान का, पॉपुलर तो पब्लिक में वो हो रहा है, और वैसे भी हमें लेफ्ट की जमात समझा जाता था और हमें जमहूरी और सिविल लिबर्टीज के हवाले से और जमहूरियत पसंद समझा जाता था, तो अब ये सारा बयानिया तो इमरान खान की गोद में है, हमें तो सिर्फ जो है लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि कहां गई वो पीपल्स पार्टी, कहां गया वो आपका आपके नारे, और कहां वो आप जो एक लिबरल आपका था वो सारा इमेज आपने अपना टर्निश कर लिया है, और आप मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की गोद में जाके बैठ गए हैं। वो शहबाज शरीफ जो कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूं और 30 साल से उनका बंदा हूं और मुझे इस पर शर्मिंदगी भी नहीं है, तो अब वो अपना इमेज ठीक करने के लिए आज के अखबार में फैसल करीम कुंडी साहब की खबर ऊपर टॉप पे लगी हुई है कि हमारा पीटीआई से इत्तेहाद हो सकता है। आज के ही अखबार में नीचे लोअर बॉटम में बिलावल भुट्टो जरदारी जो उनकी पार्टी के चेयरमैन है, उनका बयान है कि 9 मई का वाक्य के जिम्मेदारों के साथ हाथ नहीं मिल सकता, हमारे कोई इत्तेहाद का चांस नहीं है। वो इतने कंफ्यूज हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही। अभी उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की बड़ी धूम थी कि उसमें बड़े फैसले होंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से बाहर निकले शाजिया मरी और उनके साथ एक और लीडर थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अभी हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब इलेक्शन की तारीख दे सकते थे या नहीं दे सकते थे। इसका मतलब है आप इलेक्शन मीटिंग में जाने से पहले आपने इस बात पर गौर नहीं किया और आपकी जो लीगल टीम है उसने आपको वाजे नहीं किया, आप अभी तक इस बात पर गौर कर रहे हैं। बेसिकली वो ये देख रहे हैं कि पलड़ा किसका भारी होगा, हमने इमरान खान का साथ देना है या इमरान खान के खिलाफ चलना है। अभी तक वो इस कन्फ्यूजन का शिकार है क्योंकि सर्वे जो भी होते हैं कराची तक खैबर, वो सारे ये बताते हैं कि इमरान खान ही अभी तक टॉप पे है और उसी की हुकूमत आएगी इलेक्शन की सूरत में। जी
क्विकली, अनवारुल हक काकर साहब का एज ए प्राइम मिनिस्टर क्या रोल है आप समझते हैं?
अनवारुल हक काकर साहब का बाकी रोल तो उनका माशाल्लाह, वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं बताने की कि मैं वो वाला मोहम्मद खान जुनेजो जो नहीं हूं 1985 वाला, मैं 2023 वाला मोहम्मद खान जुनेजो हूं, लेकिन उनको कामयाबी उन्हें खास नहीं हो रही। उन्हें बार बार उकसा रहे हैं दोस्त के भाई आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप बोले हैं, लगता है ऐसा है कि सारा हमारी हुकूमत पिंडी से चल रही है और जीएसक्यू चला रहा है और हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब चला रहे हैं, आप तो कुछ नहीं कर रहे। तो वो फिर कहीं कहीं किसी टेलीविजन चैनल पर जाते हैं, कोशिश करते हैं, जो उन्होंने रटे रटाए फिक्रे उनको बताए गए हैं या उन्होंने खुद रटे हुए हैं रिपीट करते रहते हैं, लेकिन कोई खास इस तरह का विजन उनका सामने नहीं आ रहा। हाँ, अलबत्ता अमरीका और कैनेडा में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए खबर है कि 22 सितंबर को वो न्यूयॉर्क आ रहे हैं, वो अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं कि वहां बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मैं यूएन में स्पीच करूंगा। स्पीच तो हमारे फॉरेन ऑफिस वाले बाबुओं ने लिख के देनी है, वो पढ़ देंगे वहां, लेकिन कनाडा और अमेरिका भर से जो पीटीआई के लोग हैं या इमरान खान को जो हक पे समझते हैं, जो समझते हैं कि इमरान खान के साथ इस वक्त ज्यादती जुल्म हो रही है, वो सारे 22 सितंबर को न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशन के सामने इकट्ठे हो रहे हैं और वहां मुजाहरा कर रहे हैं और भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं। शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा ओवरसीज पाकिस्तानियों स्पेशली अमेरिका और कनाडा के लोगों ने इतना बड़ा मुजाहरा नहीं किया होगा जितना अब अनवारुल हक काकर को वहां फेस करना पड़ेगा। देखें, उनके साथ मुर्तजा सोलंगी साहब भी आएंगे, वो भी वाशिंगटन में, उनके भी बड़े मामलात हैं, वो भी आएंगे। वजीर खारज हमारे जो वजीर खारजा हैं सलीम अब्बास जिलानी, वो यहाँ वाशिंगटन में सफीर भी रह के गए हैं, सेक्रेटरी खारजा भी रहे हैं, वो भी आएंगे, और भी उनके कैबिनेट में जिस जिसको अमरीका देखने का शौक होगा वो यहाँ तशरीफ लाएंगे। लेकिन यहाँ आगे शहबाज गिल जो पीटीआई के हैं और जो लोग पीटीआई के लोग हैं वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, और कैनेडा से भी यहाँ लोग नईम रियाजत वगैरह जो कॉर्नवॉल में हैं और साकिब कुरैशी जो पीटीआई के कैनेडा के प्रेजिडेंट हैं कैलगरी में, ये प्लान कर रहे हैं कि यहाँ से भी बड़ा जुलूस लेके वहां पहुंचा जाए। और अमेरिका की तमाम स्टेट से तो पीटीआई वाले इकट्ठे हो ही रहे हैं, तो 22 सितंबर का ओवरसीज पाकिस्तानी जो नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं उनका आमना सामना होगा काकड़ साहब से, तो फिर उनसे वापसी पे रिपोर्ट लेंगे कि उन्होंने काकड़ साहब को कैसा पाया।
फयाज बलान साहब, दिल तो ये चाहता है कि आपसे और बातें करता रहूं और सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं, करता रहूं, मगर टॉप ऑफ द आवर का वक्त भी हो गया है और मेरे सामने शाजिया ملک جی بھی آ کے بیٹھ گئی ہیں یہاں پر اپنی نیوز لے کے. انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اگلے ٹیوزڈے کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ سر آپ کا.
انشاءاللہ
شاء اللہ. فیاض بلانا سے ہم نے آپ کی بات چیت کروائی. کچھ اسپانسرز کے پیغامات لیتے ہیں اور پھر آپ کو آلموسٹ ایک گھنٹہ برداشت کے لیے دیتا ہوں میں آپ کو. دیکھیں میں برداشت کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں نا. یہ سزا مجھے نہیں ملے گی, آپ تمام کو یہ سزا ملے گی اور قیامت والے دن